ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता संग्रह 25 विभिन्न गीता ग्रंथों का अनुवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बद्नुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। गीता इस शब्द का सनातन धर्म और संस्कृति में अत्यंत विशिष्ट महत्व है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेनाएं भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर खड़ी थीं। महाविनाश की स्पष्ट संभावना तथा स्वजनों के मोह के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित होकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। इन्हीं विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिस ज्ञानामृत का पान कराकर उत्साहित एवं स्वस्थ चित्त किया वही भगवद गीता है। महाभारत में समाहित 700 श्लोक वाली इस दिव्य रचना में जो ज्ञान समाहित है वह मनुष्य मात्र के लिए विषम परिस्थितियों में भी संजीवनी तुल्य है। इसी कारण यह जन जन में लोकप्रिय होकर मात्र गीता के नाम से प्रख्यात हुई। युद्ध के बाद बहुत काल बीतने पर जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता के रूप में सुने गए ज्ञान को पुनः सुनने की इच्छा व्यक्त की तो भगवान कृष्ण को अर्जुन का विचलित चित्त होकर वह दिव्य गान भूलना अप्रिय लगा। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, सही धर्मः सुपर्याप्तो ब्राह्मणः पदवेदने न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुं शेषतः परम ही ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम्। वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को जो नवीन उपदेश दिया वह उत्तर गीता के रूप में उपलब्ध होता है, जिसका विद्वानों में बड़ा आदर रहा है। उत्तर गीता पर तो श्री आद्य शंकराचार्य के गुरु श्री गौड़ पादाचार्य का भाष्य भी सौभाग्य से उपलब्ध है। शास्त्र तो अनंत हैं, रुचियां, आवश्यकताएं, मनस्थितियां, परिस्थितियां इत्यादि भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए नाना इतिहास पुराण आदि ग्रंथों में विभिन्न श्रेष्ठ जनों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों के सार रूप में अन्य अन्य गीताएं प्राप्त होती हैं। कुछ प्राचीन गीताएं स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या शताधिक है। इनमें कई गीताएं अत्यंत प्रसिद्ध तथा बड़े महत्व की हैं। वस्तुतः वेदों के तीन भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड। इसमें ज्ञान कांड अंतिम है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय प्रायः यही है। उपनिषदों में गूढ़ भाषा शैली में वर्णित इसी ज्ञान तत्व को प्रायः विभिन्न गीताओं में सरल सुबोध भाषा शैली में अभिव्यक्त किया गया है। कहीं कहीं उसे समझाने के लिए मनोरंजक दृष्टांतों अथवा सहायक अनुकूल पृष्ठभूमि का भी सम्यक उपयोग किया गया है। गीता के मूल में संस्कृत का गीतम शब्द है, परंतु उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग होने तथा उसके अनुकरण के कारण गीता शब्द बना माना जाता है। इसीलिए विभिन्न गीताओं की पुष्पिकाओं में भगवत गीतोपनिषद, भगवती गोतोपनिषद, शिव गोतोपनिषद इत्यादि पाया जाता है। विभिन्न गीताओं में भगवान के विभिन्न स्वरूपों की विभूतियों का भी विशद वर्णन तथा श्रोता द्वारा विस्मित होकर की गई उनकी स्तुतियाँ भी मिलती हैं। अतएव गीयते स्तुयते यह स गीता, ऐसा भी कह सकते हैं। गीता प्रेस द्वारा सर्वमान्य श्रीमद् भगवद गीता तो विभिन्न भाष्यों टीकाओं के साथ विभिन्न रूपों में प्रारंभ से ही सतत प्रकाशित हो रही है, परंतु अन्य अन्य महत्वपूर्ण गीताएं आज भी जन सामान्य के लिए दुर्लभ हैं। अधिकाधिक गीता ग्रंथ प्रामाणिक पाठ तथा सुबोध अधिक हिंदी अनुवाद के साथ विज्ञ पाठकों को एकत्र उपलब्ध हो जाएं तथा हमारी आर्ष ज्ञान राशि भी सुरक्षित तथा संरक्षित रहे, इसी भावना से विभिन्न गीताओं का सानुवाद संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है। सुविधाजनक आकार वाले प्रस्तुत गुच्छक में गणेश गीता, हंस गीता, नारद गीता, राम गीता, उत्तर गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, हारित गीता, यम गीता, भगवती गीता इत्यादि कुल 25 गीताओं को सानुवाद संकलित किया गया है। आशा है आर्ष साहित्य के प्रेमी तथा आत्मकल्याण के इच्छुक सभी पाठक इसका अध्ययन करके लाभान्वित होंगे। गणेश गीता। भगवान श्री गणेश जी द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अंतर्गत कुल 11 अध्यायों में विस्तृत है। इसमें मूल रूप से संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी द्वारा राजा वरेण्य को दिए गए ब्रह्म विद्या रूपी उपदेशों का वर्णन है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्ध योग कहा गया है। इसे सुनकर राजा को मुक्तिबद्ध प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को कह सुनाया। फिर क्रमशः ऋषि शौनक तथा परम भागवत सुखदेव जी ने इसे प्राप्त किया। उपदेशों के विषय प्रायः भगवत गीता के समान ही हैं। इस गीता में कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, योग साधना, प्राणायाम, मानस पूजा, सगुणोपासना, विभूति योग, गणेश जी के विश्वरूप का दर्शन, त्रिविध प्रकृति तथा उसके अनुसार जीव की गति आदि अन्य अन्य महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है, जो साधन एवं तत्व ज्ञान की दृष्टि से बड़ा कल्याणकारी है। इस गीता के अंत में इसे पाठ तथा मनन करने का महात्म्य भी वर्णित है। गाणपत्य संप्रदाय के अत्यंत सम्माननीय इस ग्रंथ पर संस्कृत तथा मराठी में भी कई टीकाएं मिलती हैं, जो इसी विशिष्टता की परिचायक हैं। इसी गणेश गीता को यहाँ अनुवाद सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला अध्याय, सूत शौनक संवाद में गणेश गीता का उपक्रम। शुक उवाच। एवमेव पुरा पृष्टः शौनकेन महात्मना ससूतः कथयामास गीतां व्यास मुखाच्छ्रुतां। शुकदेव जी बोले, पूर्व काल में महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता का वर्णन किया था। सूत उवाच। अष्टादश पुराणोक्तमृतं प्राशितं त्वया ततो अति रसवत् पातुमिच्छाम्यमृतमुत्तमम्। सूत जी बोले, हे भगवन, आपने अष्टादश पुराणों के सार रूप अमृत का मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है। येनामृतमयो भूत्वा पुमान ब्रह्मामृतम यतः योगामृतम महाभाग तन्मे करुणया वद। जिस अमृत को पाकर मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाते हैं, हे महाभाग, उस योगामृत का कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास उवाच। अथ गीतां प्रवक्ष्यामि योग मार्ग प्रकाशिनीम नियुक्ता प्रच्छते सूत राज्ञे गजमुखेनिया। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का अब तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसको राजा वरेण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने कहा था। वरेण्य उवाच। विघ्नेश्वर महाबाहो सर्व विद्या विशारद सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ योगम में वक्तुमर्हसि। राजा वरेण्य बोले, हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन उवाच। सम्यक व्यवसिता राजन मतिस्ते अनुग्रहान मम शृणु गीतां प्रवक्ष्यामि योगामृतमयीं नृप। श्री गजानन बोले, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है। सुनो, मैं योगामृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूँ। न योगम योगमित्याहुर योगो योगो न च श्रियः न योगो विषयैर योगो न च मात्रादिभिस्तथा। योग इस शब्द का ही अर्थ योग नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। योगो यह पितृमात्र बन्धुपुत्रादेर्न स योगो नराधिप यो योगो बन्धुपुत्रादेर्यश्चाष्टभूतिभिः सह। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है, आठ प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। न स योग स्त्रिया योगो जगद्भूत रूपया राज्य योगश्च नो योगो न योगो गजवाजिभिः। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है, राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। योगो नेन्द्र पदस्यापि योगो योगार्थिनः प्रियः योगो यह सत्यलोकस्य न स योगो मतो मम। इंद्रप्रद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है, योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा अथवा सत्यलोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। शैवस्य योगो नो योगो वैष्णवस्य पदस्य यह न योगो भूप सूर्य सूर्यत्वं चंद्रत्वं न कुबेरता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, सूर्य चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है। ना नीलत्वम ना ललत्वम नामरत्वम न कालता न वारुण्यम न नैरृत्यम योगो न सार्वभौमता। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देवस्वरूप, कालस्वरूप, वरुण स्वरूप, निरृति स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। योगम नानाविधम भूप युञ्जन्ति ज्ञानिनस्ततम भवन्ति वित्रशा योगे जिताहारा विरेतसः। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। पावयन्त्यखिलान् लोकान् वशीकृत जगत्त्रयः करुणापूर्ण हृदया बोधयन्त्यपि कांश्चन। ज्ञानी लोग तीनों लोकों को वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं, उनका हृदय दया से पूर्ण होता है और वे सत्पात्रों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। जीवन मुक्ता हृदय मग्नाः परमानंद रूपिणी निमील्याक्षिणी पश्यन्तः परम ब्रह्म हृदय स्थितम्। वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित परम ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। ध्यायन्तः परमं ब्रह्मचित्ते योग वशीकृते भूतानि स्वात्मना तुल्यं सर्वाणि गणयन्ति ते। योग से वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। येन केन चिदाच्छिन्ना येन केन चिदाहताः येन केन चिदाकृष्टा येन केन चिदाश्रिताः करुणापूर्ण हृदया भ्रमन्ति धरणी तले अनुग्रहाय लोकानां जित क्रोधा जितेन्द्रियाः। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छिपाए हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित, कहीं किसी से बुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। देह मात्र भ्रतो भूप समलोष्टाश्म कांचनाः एतादृशा महाभाग्याः स्युश्चक्षुर्गोचराः प्रिय तमिदानीमहं वक्षे शृणु योगमनुत्तमं श्रुत्वा यम मुच्यते जन्तुः पापेभ्यो भवसागरात्। प्रिय राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे अब कहता हूँ सुनो, जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भवसागर से मुक्त हो जाता है। शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्येमये नराधिप या भेद बुद्धिर्योगः स सम्यग् योगो मतो मम। हे राजन, शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। अहमेव जगद्यस्मात् सृजामि पालयामि च कृत्वा नानाविधं वेषं संहरामि स्वलीलया। मैं ही अपनी लीला से अनेक वेश धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता हूँ। अहमेव महाविष्णु, अहमेव सदाशिव, अहमेव महाशक्ति, अहमेव वार्यमा। प्रिय, हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। अहमेको नृणाम नाथो जातः पंचविदः पुरा अज्ञानाम नाम न जानंती जगत कारण कारणम। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूँ। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश, इन पांच प्रकार से मैं पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत के कारण का भी कारण हूँ, मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। मत्तो अग्निरापो धरणी मत्त आकाश मारुतौ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपाला दिशो दश वसवो मुनयो गावो मनवः पशवो अपि च सरितः सागरा यक्षा वृक्षाः पक्षिणगणा अपि तथैक विंशति स्वर्गा नागा सप्तवनानि च मनुष्याः सत्पर्वताः साध्याः सिद्धा रक्षो गणास्तथा। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल और दसों दिशाएं, आठ वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अहम साक्षी जगत चक्षुरलिप्तः सर्वकर्मभिः अविकारो अप्रमेयो अहम व्यक्तो विश्वगो अव्ययः। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। अहमेव परम ब्रह्मा व्ययानंदात्मकम नृप मोह यत्यखिलान माया श्रेष्ठान मम नरानमून। हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। सर्वदा षड विकारेषु तानयम योजयेद भ्रशम हित्वा जा पटलम जग मुरनैर केर जन्मभिः शनैः विरज्य विन्दति ब्रह्म विषयेषु सुबोधतः अच्छेद्यम शस्त्र संघातैर दाह्य मन लेन च अक्लेद्यम भूप भुवनैर शोष्यम मारुतेन च अवध्यम वध्यमाने अपि शरीरे अस्मिन् नराधिप। वह माया सदा काम क्रोध आदि छह विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब शनै शनै अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं तब यह प्राणी विषयों से जाग कर और उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता, और हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रशसन्ति श्रुतिरितां त्रयीवादरता मूढ़ास्ततो अन्यन मन्वते अपि न। वेदत्रयी में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। कुर्वन्ति सततम कर्म जन्म मृत्यु फलप्रदम स्वर्गैश्वर्यता ध्वस्त चेतना भोगबुद्धयः। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। संपादयन्ति ते भूप स्वात्मना निजबंधनम संसार चक्रम युञ्जन्ति जड़ाह कर्म परा नराह। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्म परायण पुरुष संसार चक्र में पड़े रहते हैं। यस्य यद्विहितं कर्म तत्कर्तव्यं मदपर मदर्पणं ततो अस्य कर्म बीजा नामोच्छिन्ना स्युर महांकुराह। जिसके लिए जो कर्म विधान है वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए, तभी इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महान अंकुर नष्ट हो सकते हैं। चित्त शुद्धिश्च महति विज्ञान साधिका भवेत्। विज्ञानेन ही विज्ञातम परम ब्रह्म मुनीश्वरैः। चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधन होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने पर ब्रह्म को जाना है। तस्मात् कर्माणि कुर्वीत बुद्धियुक्तो नराधिप न त्व कर्मा भवेत् कोपो को अपि स्वधर्म त्याग वांस तथा। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करे वह बुद्धि युक्त होकर करे। किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाति यदि कर्माणि ततः सिद्धिम न विन्दति आदौ ज्ञानेनाधिकारः कर्मण्येव स युज्यते। यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उससे उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्मणा शुद्ध हृदयो अभेद बुद्धि बुद्धिमुपैष्यति स च योगः समाख्यातो अमृतत्वाय हि कल्पते। कर्म से शुद्ध हृदय होकर साधक अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है, उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। योगमन्यं प्रवक्ष्यामि शृणु भूप तदुत्तमम् पशौ पुत्रे तथा मित्रे शत्रौ बंधौ सुहृज्जने बहिर्दृष्टया च समया हृतस्थया लोकयेत् पुमान् सुखे दुखे तथा मर्षे हर्षे भीतौ समो भवेत्। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु मित्र पुत्र शत्रु बंधु तथा प्रियजन में समान दृष्टि करनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख दुख क्रोध हर्ष भय इनमें समान रहना चाहिए। रोगाप्तौ चैव भोगाप्तौ वा जये विजये अपि च श्रियो अयोगे च योगे च लाभालाभे मृतावपि। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, हानि लाभ जन्म मरण इन सब में मन को समान रखना उचित है। समो माम वस्तु जातेषु पश्यन्नन्तर बहिः स्थितं सूर्य सोमे जले वन्नो शिवे शक्तौ तथा निले द्विजे हृदे महानद्यां तीर्थे क्षेत्रे अघनाशिनी विष्णौ च सर्वदेवेषु तथा यक्षो रगेषु च गंधर्वेषु मनुष्येषु तथा तिर्यग्भवेषु च सततं माम हि यः पश्येत्सो अयम योग विदुच्यते। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना, सूर्य चंद्रमा जल अग्नि शिव शक्ति वायु ब्राह्मण सरोवर पापहारी महानदी तीर्थ क्षेत्र विष्णु संपूर्ण देवता यक्ष उरग गंधर्व मनुष्य और पक्षी इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है वही योग को जानने वाला कहलाता है। संपराहृत्य स्वार्थेभ्य इंद्रियाणि विवेकतः सर्वत्र समता बुद्धिः स योगी भूप मे मतः। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है वही मेरी दृष्टि में योगी है। आत्मा नात्म विवेकेन या बुद्धिर्देव योगतः स्वधर्मासक्त चित्तस्य तद्योगो योग उच्यते। धर्माधर्मौ जहातिह तया त्यक्त उभावपि अतो योगाय युञ्जीत योगो वैधिषु कौशलम्। अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणी की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है उस बुद्धि के योग का नाम ही योग है। और उसी बुद्धि के न होने से यह प्राणी धर्म अधर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। धर्म अधर्म फले त्यक्त्वा मनीषी विचितेन्द्रिय जन्म बंध विनुर्मुक्तः स्थानम संयात्य नामयम्। जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और अधर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। यदा ह्य ज्ञान कालश्यम जंतोर्बुद्धि क्रमिष्यति तदा सौ याति वैराग्यम वेद वाक्यादिषु क्रमात्। जब इस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्यादिकों में वैराग्य हो जाता है। त्रयी विप्रतिपन्नस्य स्थाणुत्वं यास्यते यदा परात्मन्य चला बुद्धिस्त दासौ योग माप्नुयात। जब तीनों वेदों में प्रतिपादित किए गए सकाम कर्म से यह बुद्धि पूर्णत है और परमात्मा में लगकर निश्चल हो जाती है, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। मानसान खिलान कामान यदा धीमांस त्यजेत प्रिय स्वात्मनि स्वेन संतुष्ट स्थिर बुद्धिस्तदोच्यते। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दे और अपने आत्मा में आप ही से संतुष्ट हो जाए, तब यह स्थिर बुद्धि कहलाता है। वितृष्ण सर्वसौख्येषु नोद्विग्नो दुख संगमे गत साध्व सरुड्रागः स्थिर बुद्धिस्त दोच्यते। किसी प्रकार के भी सांसारिक सुखों में तृष्णा न रखने वाला, दुख में अनुद्विग्न, भय क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। यथायम कमठो अंगानी संकोचयति सर्वतः विषयेभ्यस्तथा खानी संकर्षेद्योग तत्परः। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार से योगी को उचित है कि वह विषयों से इंद्रियों को समेट ले। व्यावर्तन्ते अस्य विषयास्त्यक्ता हारस्य वर्ष्मिणः विना रागम न रागो अपि दृष्ट्वा ब्रह्म विनश्यति। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। विपश्चिद्यत्तते भूपस्थिति मास्थाय योगिनः मन्थयित्वेन्द्रिय याणस्य हरंती बलतो मनः। हे राजन, इंद्रियगण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती हैं। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करने का यत्न करना चाहिए। युक्तस्तानि वशे कृत्वा सर्वदा मत्परो भवेत् संयतानीन्द्रियाणि यस्यासौ कृतधीर्मतः। इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। चिंतयानस्य विषयान संगस्ते सूपजायते कामः संजायते तस्मात्ततः क्रोधो अभिवर्धते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उनमें अनुराग हो जाता है, आसक्ति से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधाद ज्ञान संभूतिर विभ्रमस्तु ततः स्मृतेः भ्रंशात् स्मृतेर मतेर ध्वंसात्सो अपि नश्यति। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और इससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। बिना द्वेषम च रागम च गौचरान यस्तु खैश्चरेत स्वाधीन हृदयो वश्येह संतोषम च समृच्छति। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने वश में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधस्यापि दुखस्य संतोषे विलयो भवेत् प्रज्ञया संस्थितश्चायं प्रसन्न हृदयो भवेत्। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। विना प्रसादम न मतिर विना मत्यान भावना विना ताम न समो भूप विना तेन कुतः सुखम। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं होता। इंद्रियाश्वान विचरतो विषया ननु वर्तन्ते यन मनस्तत् आत्मनि यन्मनस्तन्मतिं हन्यादप्सु नावं मरुद्यथा। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देता है, वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है, वह प्रज्ञा को हर लेता है। या रात्रि सर्वभूतामनाम तस्याम निद्राति नैव सह न स्वप्नन्ति ते यत्र ता रात्रिस्तस्य भूमि पर। हे राजन, अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है, उसमें इंद्रिय को वश में करने वाले संयमी योगी जागते हैं, और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं, वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि स्वरूप है। सरिताम पति मायांति वनानि सर्वतो यथा अयांति यम तथा कामा न सा शांतिम क्वचिल लभेत। जिस प्रकार नदियों आदि के सभी जल जम समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाले को भी शांति नहीं होती। अतस्तानी संरुद्ध्य सर्वतः खानी मानवः स्वस्वार्थेभ्यः प्रधावंती बुद्धिरस्य स्थिरा तदा। इस कारण प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ममता हंकृति त्यक्त्वा सर्वान् कामांश्च यस्त्यजेत नित्यं ज्ञानरतो भूत्वा ज्ञानान् मुक्तिं स यास्यति। जो ममत्व अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। एवं ब्रह्मधियं भूप यो विजानाति दैवतः तुर्यामवस्थां प्राप्यापि जीवन मुक्तिं प्रयास्यति। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी दैव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायाम सांख्य सारार्थ योगो नाम प्रथमो अध्यायः। जय श्री राम।